खुदावंद खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, और खुदावंद फरमाता है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को क्या दी है, अज़मत दी है, इज़्ज़त दी है, जिसके बारे में खुदा का बहंदा यहन्ना रसूल लिखते हुए कहता है यहन्ना की इंजील में कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। तो खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, लागोस, जिंदा कलाम जो जिंदगियां बदलता है। सो उसी के पाक और जलाली नाम में, जिसका नाम बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, जिसे आमीन कहा गया है, जिसे राह हक और ज़िंदगी कहा गया है, उसके नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 103 उसकी पहली 9 आयात को पढ़ेंगे, और अपनी स्टडी को, सिलसिले को जारी रखते हुए कि हम अकाब हैं, मुर्गी नहीं, इस पर गौर करेंगे। और खुदा का बंदा दाऊद इसे गाते हुए कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस को, उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से असूदा करता है। तू अकाब की मानद अरसरे नौ जमा होता है। तू अकाब की मानद अरसरे नौ जमा होता है। मैंने जैसे कहा कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, हम अकाब हैं, मुर्गी नहीं। अकाब की तरह परवाज करना, अकाब की तरह बुलंदियों पर घर बनाना, अकाब की तरह तेज होना। पुराने अहदनामा में अहबार की किताब में खुदा का कलाम कहता है कि साउल बादशाह और यूनतन अकाब की मानद तेज और शेर की मानद दलेर थे। और हमने देखा कल यसाया उसका 40वां बाप उसकी 29वीं आयत से कि वो थके मांदों को जोर बख्शता है और ना तवानाओं को कुवत देता है, तवानाई देता है, और जो कोई इस पर तवक्कल करता है, क्या लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले किसकी मानद हैं, अकाबों की मानद हैं, वो पहाड़ों में से यानी के बाल पर से उड़ेंगे और वो ना थकेंगे ना मांदा होंगे ना उनको किसी चीज़ से ज़र पहुँचेगा। सो हम अकाब हैं, मुर्गी नहीं। अकाब आसमानों पर उड़ता है, अकाब ऊंचे पहाड़ों पर अपना मकाम बनाता है, अकाब की नज़र बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज तराज, और वो अपनी कुव्वत को नया बनाता रहता है। और खुदावंद भी यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से सूदा करूँगा। और क्या लिखा है, तू अकाब की मानद अरसरे नौजवान होता है, यानी कि हमारी कुव्वत रोज़ बरोज़ नहीं होती है। कहाँ से, यीशु मसीह से। स्वयं हम चंद लम्हों के लिए खुदा के जुड़ चुके हैं। खुदा बाप हम सबको अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखा, और आज का इलम सिर्फ अकली ना हो बल्कि अपने दिलों में इसे जगह देकर अमली बनाए, ताकि इस ज़मीन पर तेरी बरकत और तेरी शुक्रगुजारी हम सब के लबों से होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आज अपने कलाम के वसीला से हम सब की रहनुमाई कर, आमीन। इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 5वां बाप। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि तुम क्या हो, मुकद्दसीन, अकाब। हमने कल देखा था कि हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे ज़बूर नंबर 1 में कहा गया है कि तुम उस दरख्त की मानद जो हो, दरख्त की मानद जो पानी की नदियाँ के पास लगाया गया, जो सदा बहार हरा भरा रहता है। जैसे उस नदी के पास लगा हुआ दरख्त हरा भरा रहता है, जैसे अकाब अपनी कुव्वत को हर नोज हर साल नया करता रहता है, वैसे ही हम मुकद्दसीन को, मुकद्दस लोगों को क्या कहा गया है, इफ़सियों 5 बाप उसकी पहली आयत से, पस अजीज़ फरजंदों की तरह खुदा की मानत बनो और मोहब्बत से चलो। हमारी परवाज़, हमारा चलना, ज़िंदगी बसर करना कैसा होना चाहिए? मोहब्बत से, बेज़र मोहब्बत, बेरियाकारी की मोहब्बत, बेज़र मोहब्बत जिसमें किसी किस्म का लालच ना हो, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। खुशबू की मानद, यीशु मसीह की खुशबू, यीशु मसीह की कुर्बानी की खुशबू ज़मीन से आसमान तक पहुंची और उसने हमारे लिए आसमान के बहिश्त के दरवाज़े खोले, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर एक के लिए आसमानी दरवाज़े खोले। इसी तरह आज हम भी ज़मीन पर यीशु मसीह के क्या हैं, पैरोकार हैं, और हम भी बहुतों के लिए ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलने का वसीला बन सकते हैं। किस तरह? जब यीशु मसीह की खुशखबरी बनेंगे। ये भी वो काम है जो हम ईमानदारों को मुनासिब है कि इस ज़मीन पर करें, उसकी खुशखबरी बने। उसकी खुशखबरी की खुशबू हम में से आनी चाहिए। और चौथी आयत में क्या लिखा है, तीसरी आयत में, और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है। हम मुकद्दसों को क्या मुनासिब है? आगे लिखा है कि तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। बुरी बातें नहीं, बुरे काम नहीं, नापाकी नहीं, बल्कि क्या हो? शुक्रगुजारी हो। शुक्रगुजारी का जब लफ्ज़ यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर शुक्रगुजारी से मुराद जो यूनानी लफ्ज़ है वो है ख्रिस्तस, शुक्रगुजारी की कुर्बानी हमारे लबों से गुजरानी जानी चाहिए हर रोज़। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम सब को खुदा की नेमतों को याद रखने की ज़रूरत है, और जब हम उसकी नेमतों को याद करेंगे तो शुक्रगुजारी होगी। कल रात जब हम ख़ानदान में दुआ कर रहे थे, नई बातचीत कर रहे थे दुआ से पहले, तो कैरी भी मौजूद थी। कैरी ने एक कहानी बताई, सच्ची कहानी। एक अमीर आदमी ने अपने घर के दरीचे से यानी के बारी से देखा एक भिखारी को जो कूड़ा चुगने वाला था और कूड़े में से वो खाने के लिए चीज़ें निकाल रहा था। उस अमीर आदमी ने कहा, खुदावन तेरा शुक्र हो कि मैं इस भिखारी की मानद नहीं हूं। और उस भिखारी ने एक ज़ेनी तवाज़न जिसका ख़राब था उस बंदे को देखा जो नंगा था, कपड़े फटे हुए थे और उसका हाल बुरा था। उस भिखारी ने उसे देखकर कहा कि खुदावन तेरा शुक्र हो मैं इस ज़ेनी बीमार जैसे बंदे जैसा नहीं हूँ, कि मेरा ज़हन बीमार नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। उसने खुदा की शुक्रगुजारी की। उस जिस बंदे का ज़हन ख़राब था उसने अपने गली में चलते हुए देखा कि कहीं पर फौतगी है और उसके घर वाले रो रहे हैं और वो बंदा मर गया। और उस पागल ने ये कहा, खुदावन तेरा शुक्र हो कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं इसकी तरह मरा हुआ नहीं हूँ। सो शुक्रगुजारी की रूह हर हालात में, चाहे हम दौलतमंद हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई पागल है, सोचने की सीखने की बात यह है कि शुक्रगुजारी की रूह बहुत अहम रवैया है। ہم جس بھی حالات میں ہوں ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند شکر گزاری کرنے والے دل کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں شکر گزاری کے بارے میں غالباً بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں پرانے اور نئے عہد نامہ میں کہ شکر گزاری ہماری شکر گزاری خدا کے حضور برکت کا باعث بنتی ہے۔ آپ کی شکر گزاری، میری شکر گزاری، لبوں کی شکر گزاری ہے، ایک ہدیہ کی شکر گزاری ہے جو اپنا روپیہ پیسہ ہم دیتے ہیں، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے کیا بنتی ہے؟ خداوند کی شکر گزاری۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پھر ہم وقت کو مناسب جانتے ہوئے چند ایک باتیں اور سیکھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا نواں باپ، دوسرے کرنتھیوں کے آٹھویں اور نویں باپ میں ہمیں پالوس رسول کلیسیا کے بارے میں سکھاتا ہے کہ کس طرح مقدونیا کی کلیسیا نے مصیبت زدہ کلیسیا جو یروشلم میں تھی ان کے لیے اپنا سب کچھ بھیجا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور نویں باپ کی جب ہم گیارہویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ اسی رویے کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ خدا مقدسین کی جو شکر گزاری کی قربانیاں ہیں ان پر نگاہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اور گیارہویں آیت میں لکھا ہے، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی ثقافت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ جب ہمیں خدا مہیا کرتا ہے تو ہم اپنا روپیہ پیسہ دے کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی مٹھی میں کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تیرا بھلا کرے، خداوند تجھے برکت دے، تو وہ کس کی شکر گزاری کرتا ہے؟ خداوند تیرا شکر ہو کہ یہ بندہ، یہ بندی میرے لیے وسیلہ بنی۔ اس لیے شکر گزاری نہ کہ صرف گیتوں کی صورت میں، نہ کہ صرف ہدیہ جات کی صورت میں، بلکہ ہماری زندگی شکر گزاری کی قربانی ہونی چاہیے ہر روز۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا انجام بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتجاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں سے خدا کی شکر گزاری ہوتی ہیں۔ جب میں اور آپ دیکھ ایک دوسرے کی ضرورت میں اس کی احتجاجیں رفع کرتے ہیں، یعنی کہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی شکر گزاری، خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری کا نئے عہد نامے میں جہاں کہیں بھی لفظ استعمال ہوا ہے اسے خرسطس یوخرس قربانی کہا گیا ہے، یونانی کا یہ لفظ ہے۔ اس لیے ہمیں بائبل مقدس میں درست رویہ اور غلط رویہ شکر گزاری کا ملتا ہے۔ میرے ساتھ ایک چھوٹی سی سچی کہانی دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 18 باب، وہاں پر ہمیں ایک فریسی اور فقی نظر آتا ہے۔ یہ کہانی خداوند یسوع مسیح نے اس فریسی اور محصول لینے والے کی بتائی، یہ بھی شکر گزاری کر رہے تھے۔ ہم اسے پڑھیں گے اور صرف اس پر غور کریں گے۔ 9 آیت سے 14 آیت تک کی یہ ہمیں سچائی ملتی ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 18 باب اس کی 9 آیت۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو آدمی ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دائیقی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बढ़ाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस कहानी में यही हमें रवैया नज़र आता है कि दोनों दुआ करने के लिए गए, शुक्रगुजारी लबों की गुजारने के लिए गए और एक ने अपना ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि मैं जालम नहीं, मैं इसकी मानद नहीं हूँ। ऐसी शुक्रगुजारियों को खुदा पसंद नहीं करता। अगर मैं या आप ऐसा रवैया रखेंगे तो खुदावन खुदा कहता है कि ये बंदा उस फरीसी की निस्बत महसूल लेने वाला रास्त बहस ठहर कर घर गया। रास्तबाज ठहरने से मुराद यानी कि वो ईमानदार था और उसकी ईमान की ज़िंदगी दूसरों के लिए रास्तबाजी का, शुक्रगुजारी का वसीला बनी। हम जो रास्तबाज हैं, हम जो मुकद्दसीन हैं, हमको क्या मुनासिब है? इन दो आदमियों की ज़िंदगी में हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इन दोनों आदमियों में से अपने आप को देखता हूँ, कहीं मैं आज उस फरीसी की तरह तो नहीं कि अपने आप को बढ़ा रहा हूँ और खुदा को कह रहा हूँ कि मैंने तेरे लिए ये किया, या फिर उस महसूल लेने की वाले की तरह कि खुदावन सब कुछ तेरा है, तू ही इज्जत, तू ही जलाल, तू ही हमद, तू ही तारीफ, सब कुछ तू करने वाला है, मुझ पर रहम कर। ये दो रवैये हैं शुक्रगुजारी के, एक रवैया जिसमें तकब्बर, एक रवैया जिसमें हलीमी पाई जाती है। सो पालूस रसूल कहता है कि हम मुकद्दसीन को क्या है, कि मुकद्दसीन को क्या मुनासिब है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी किस तौर से? उस महसूल लेने वाले की तरह या फिर फरीसी के तरह? फरीसी जो तकब्बर से भरा था, अपने ईमान को गिन गिन कर सुना रहा था और उस महसूल लेने वाले ने कहा मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। सो खुदावंद आप सब की रहनुमाई करे। हम क्या हैं? अकाब हैं। अकाब की मानद हमें ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। जैसे अकाब खुदावंद पर भरोसा करता है, उसकी उड़ान खुदावंद की तरफ से है, उसको बुलंद चोटियों पर वो जगह देता है, हमारा ज़मीन पर रहते हुए मकान कहाँ पर है? आसमान पर। हाँ जी, और खुदावंद खुदा जब आएगा तो उसके लोग हवा में उड़कर उसकी इस्तकबाली की शुक्रगुजारी भी करेंगे। स्वयं हम खुदा के हुजूर झुकें। और आज अकाब की मानद ज़िंदगी गुजारे, ना के मुर्गी की मानद, क्योंकि अकाबों के लिए खुदा मुहैया करता है, मुर्गियों के लिए भी खुदा मुहैया करता है, लेकिन सीखने की बात यह है कि अकाब बुलंदियों पर और मुर्गी कचरे में मुंह मारती है। हमें बादशाहों के बादशाह के सामने आसमान से मुहैया किया जाता है, इसलिए हमें अकाबों की मानद वो ज़ोर देता है। खुदा बाप आज अपने कलाम के वसीला से हम सबको खुदावंद शुक्रगुजारी की कुर्बानियां तेरे हजूर गुजरानना सिखा। आज खुदावंद इन दोनों आदमियों के वसीला से हम सीखने वाले बने कि जब भी तेरे हजूरी में आए, खाकसारी और हलीमी की सूरत में आए, क्योंकि सब कुछ पैदा करने वाला तू है, हम तेरी मखलूक हैं। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।